समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार मनोज, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we give you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 4th of August. And now, quote of the day. Either you run the day, or the day runs you. Jim Rohn. So take control of your day and also your life. And now, the headlines, Manoj.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने को स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की ये परियोजना देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और हमारे नेट जीरो दृष्टिकोण को बल प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई 2025 में भुज की यात्रा के दौरान 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखने के ठीक 4 महीने बाद ये चालू हो गया। इसके साथ ही कांडला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सुविधा वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और सतत बुनियादी ढांचे में गुजरात की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन पर श्री सोनोवाल ने रिकॉर्ड समय में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल करने के लिए डीपीए की प्रशंसा की। इस हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना से भारत के समुद्री और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ये कदम स्वदेशी तकनीक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में हरित नवाचार को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति के अनुरूप है। भारत का ध्यान 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ औद्योगिक कार्य प्रणाली पर केंद्रित है।
The first ever BIMSTEC traditional music festival will be held at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will inaugurate the event.
Artists from India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand will perform at the musical evening. Organized by the Indian Council for Cultural Relations, the festival called Saptasur, Seven Nations, One Melody will witness celebration of distinct musical traditions of the seven BIMSTEC countries. This inaugural edition marks a significant cultural milestone in BIMSTEC cooperation. The genesis of this cultural initiative can be traced to the Prime Minister Narendra Modi's affirmation at the BIMSTEC Summit in Thailand in April this year of India's commitment to strengthening regional cultural ties through music by hosting the first BIMSTEC tradition music festival in India. The event is free and open to all, welcoming audience from all walks of life to enjoy this extraordinary evening of cultural connections. Seating is available on a first-come, first-served basis and guests are requested to be seated by 6 p.m. Deepmala Kaushik, Akashvani News, Delhi.
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज दोपहर बाद भारत की 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी लुई अर्निटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान श्री मार्कोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का भी श्री मार्कोस से भेंट करने का कार्यक्रम है। श्री मार्कोस फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में एक मजबूत साझेदारी विकसित की है। दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण का एक अभिन्न स्तंभ है। राष्ट्रपति मार्कोस की यह राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह यात्रा दोनों नेताओं के लिए भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर है। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
A solar flare of M2 level, the strongest in the past 1.5 months, was recorded on the sun yesterday. The flare was detected by the Laboratory of Solar Astronomy at the Institute of Space Research of the Russian Academy of Sciences. While the flare's location lies along the Sun-Earth line, scientists have stated that at present there are no signs of solar material impacting Earth. The last larger event was observed on 20th of June when an X1.9 flare occurred. Solar flares are classified into 5 main categories based on their strength, which is measured by the peak flux of soft X-rays emitted, namely A, B, C, M and X, with X being the most powerful. Each category represents a tenfold increase in energy compared to the previous one.
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती पर चर्चा की जाएगी। समिति के निर्णयों की घोषणा बुधवार को की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में दिवाली से पहले ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रिम रूप से रेपो रेट में कटौती से ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले आंकड़े दर्शाते हैं कि दिवाली से पहले रेपो रेट में की गई किसी भी कटौती के कारण त्योहारों के दौरान ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी होती है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगातार 3 बार दरों में कुल 100 आधार अंकों की कटौती के कारण रिजर्व बैंक रेपो रेट को संभवतः 5.5% पर ही बनाए रखेगा।
Sri Amarnath Ji Yatra has been suspended from both the Baltal and Pahalgam routes in Jammu and Kashmir. In a statement, Divisional Commissioner of Kashmir, Vijay Kumar Bhiduri, said that due to the recent heavy rains, critical repair and maintenance works are required on both the Baltal and Pahalgam routes. He said it has been observed that due to continued deployment of men and machinery on the tracks, the administration would not be able to resume the Yatra.
और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
क्रिकेट में ओवल में खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन और चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करके सीरीज बराबर करने के लिए बाकी बचे 4 विकेट लेने होंगे। इससे पहले 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रुक और जो रूट के शानदार शतकों ने की। हालांकि भारत ने कल के दिन अंत में बेहतर गेंदबाजी करते हुए शानदार वापसी की। भारतीय टीम ने सिर्फ 36 रन देकर तेजी से 3 विकेट चटकाए, जिससे मैच में वापसी की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। भारत ने अपनी दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के शानदार 118 रन और आकाशदीप रविंद्र जडेजा तथा वॉशिंगटन सुंदर के महत्वपूर्ण अर्धशतकों की बदौलत 396 रनों का प्रभावशाली स्कोर खड़ा किया। भारत फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। इसके अलावा भारतीय एथलीट और पूर्व एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अबू बकर ने कल रात कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया है। अबू बकर ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर ये जीत हासिल की।
अब महानगरों के समाचार।
And we begin with Chennai. Chennai Metro Water has urged residents to pay their water and sewerage tax only through officially authorized methods. This follows complaints of payments being demanded through unauthorized channels by people posing as Metro Water staff. The board clarified that it does not authorize such practices and warned residents to remain cautious. Payments are accepted through direct billing portal. They can also scan QR codes displayed at official collection centres. Authorised personnel also carry IPOS machines. And now Metro News from Delhi. Over to Manoj.
Ji, Delhi Vidhan Sabha ka monsoon satra aaj se shuru hoga. दिल्ली सचिवालय द्वारा जारी एक पत्र में बताया गया कि दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और ये 8 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद ये तीसरा सत्र होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी सत्र की महत्वपूर्णता पर कहा कि ये राजधानी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा, क्योंकि इस बार विधानसभा पूरी तरह ई विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सदन के सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होंगे, जो नीति निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को नई ऊंचाई देंगे। और दिल्ली की एक और खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हर्ष मल्होत्रा ने कल नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में 44वें व्यापारी महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के लिए जीएसटी सहित कई बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी से संबंधित किसी भी सुधार और सरलीकरण के लिए सरकार हमेशा तैयार है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और देश के व्यापारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है।
एंड नाउ न्यूज़ फ्रॉम बेंगलुरु। अ डेलीगेशन लेड बाय सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अमरदीप सिंह भाटिया विजिटेड द तुमकुरु इंडस्ट्रियल एरियाज एंड देवनाहल्ली एरोस्पेस SEZ नियर बेंगलुरु यस्टरडे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। द तुमकुरु इंडस्ट्रियल एरिया इन कर्नाटक इज बीइंग डेवलप्ड। It will be developed as a future ready smart industrial city. The industrial park in Tumkuru is targeted to attract global and domestic investments in electronics, automotive, clean tech and logistics. The delegation visited the Devanahalli Aerospace Special Economic Zone to get insights into the advanced manufacturing capabilities, precision engineering and India's evolving role in the global aerospace supply chain.
अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने कबूतरों को दाना खिलाने से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों का हवाला देते हुए दादर स्थित लगभग एक सदी पुराने लोकप्रिय कबूतर खाने ग्रेड 2 हेरिटेज भवन को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अब इस भवन को मोटे स्लेटी तिरपाल की चादरों से ढक दिया गया है ताकि लोगों की पहुंच और दाना खिलाने की गतिविधियों को रोका जा सके। वहां लगे एक नोटिस में कहा गया है, सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि इस स्थल पर पक्षियों और जानवरों को भोजन देना और खिलाना सख्त वर्जित है। इस तरह के सार्वजनिक समारोह स्थलों पर पक्षियों को भोजन खिलाने से फंगल संक्रमण और श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इस कदम ने विवाद को जन्म दे दिया है, खासकर जैन समुदाय के सदस्यों के बीच, जो कबूतरों को दाना डालना अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का हिस्सा मानते हैं। रविवार को जैन समुदाय के कई लोगों ने कोलाबा में शहर के कबूतर दान स्थलों को बंद करने के विरोध में एक शांतिपूर्ण यात्रा निकाली। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर नगर निकाय से कबूतरों को दाना डालने के लिए वैकल्पिक निर्दिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने और विकसित करने का आग्रह किया।
And now news from Hyderabad. Telangana state has held the maximum number of organ donations in the country. The center has awarded the state government for the same at an event observing the National Organ Donation Day in Delhi. Union Health Minister J.P. Nadda presented the award to representatives of the state's Jeevan Dan program recently. As per the Union Health Ministry, Telangana reported a significantly higher rate of 4.88 organ donations per 10 lakh population during the year 2024. In recognition of this achievement, the National Organ and Tissue Transplant Organization, NOTO, presented an award to Telangana. State Health Minister D. Rajan Narasimha expressed happiness over the Telangana being named the national leader in organ donation.
अब पश्चिम बंगाल कोलकाता का रुख करते हैं। उत्तर बंगाल के जिलों में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। दक्षिण बंगाल के जिलों में भी आज बारिश होने की संभावना है।
एंड नाउ फॉर वेदर, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
अब दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी आज बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 4 अगस्त है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं। 1914 में आज ही के दिन इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई।
इन द ईयर 1923 नागपुर यूनिवर्सिटी स्टार्टेड वर्किंग।
1997 में आज ही के दिन मोहम्मद खातमी ने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट द रॉयल असेंट एक्ट। इन 1956 अप्सरा इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द फर्स्ट इन द ईस्ट वर्ल्ड वाज कमीशन्ड इन ट्रॉम्बे ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई।
1999 में आज ही के दिन चीन ने अमरीकी सेना के विमानों की नियमित उड़ानों को हांगकांग में उतरने की अनुमति देने से इनकार किया।
गोइंग बैक अ लिटिल, इन 1967 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट डैम नागार्जुन सागर मेड बाय मेसनरी सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड। इन द ईयर 1997 नीलेश कुलकर्णी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ विकेट विद हिज फर्स्ट बॉल इन टेस्ट क्रिकेट इन कोलंबो। And in the year 2000, Pranab Mukherjee and S. Jaipal Reddy, Congress I leaders, get Best Parliamentarian Awards for the year 1997-98.
2004 में आज ही के दिन नासा ने एल्टिक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया।
And now time to remember people who either born this day or who passed away today. And we begin this segment by remembering Uday Singh II. It's his birth anniversary today. He was born in 1522. He was the 12th Maharana of the Kingdom of Mewat and the founder of the city of Udaipur in the present-day state of Rajasthan, India. He was the fourth son of Rana Sangha and Rani Karnavati, the princess of Bundi. He died in the year 1572 in Gogunda. After his death, Jagmal tried to seized the throne, but the nobles of Mewar prevented Jagmal from succeeding and placed Maharana Pratap Singh on the throne on the 1st of March of the year 1572.
आज पुण्यतिथि है इब्राहिम अलकाजी की। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1925 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक थे। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ कई नाटकों का निर्देशन किया। इब्राहिम अलकाजी ने अपने जीवन काल में कलाकारों की कई पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियां सिखाई। इन कलाकारों में मनोहर सिंह, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, सुरेखा सीकरी, नीना गुप्ता और ओम पुरी जैसे कई बड़े और दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल है। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित इब्राहिम अलकाजी ने अपने शानदार करियर के दौरान 50 से अधिक नाटकों का मंचन और निर्देशन किया। इब्राहिम अलकाजी द्वारा निर्देशित कुछ प्रमुख नाटकों में तुगलक, आषाढ़ का एक दिन, धर्मवीर, भारती का अंधा युग के अलावा कई ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियर की कृतियां शामिल है। इब्राहिम अलकाजी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
After finishing my school course, etc., I took the boat and I went to England and I was received there with open arms. It was absolutely fantastic. Delhi aa gaya aur wahan maine kafi kaam shuru kiya. And then there were very few theatres, actual theatres showing works on the stage. And therefore I felt that I needed to have a theatre of my own. And I was helped a great deal. The Prime Minister, they heard about the reputation that I had also been to England, that in England I was supported a great deal. Now in England, I was not only supported that way, and they wanted me to come to Delhi, and to they had run out of people, and they didn't find the people who were working with them in the theatre good enough, etc.
अभी आप इब्राहिम अलकाजी के साक्षात्कार के कुछ अंश सुन रहे थे।
Today is also the birth anniversary of the English writer Percy Bysshe Shelley, who is considered one of the major English Romantic poets, or radical in his poetry as well as in his political and social views. Shelley did not achieve fame, unfortunately, during his lifetime, but recognition of his achievements in poetry grew steadily following his death, and he became an important influence on subsequent generation of poets, including Robert Browning, Charles Swinburne, Thomas Hardy, and W.B. Yeats. American literary critic Harold Bloom describes him as a superb craftsman, a lyric poet without a rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem. Today is also the birth anniversary of Louise Daniel Armstrong, nicknamed as Satchmo or Saj, and Pops was an American trumpeter and vocalist. He was among the most influential figures in jazz. His career spanned 5 decades and several eras in the history of jazz. Armstrong received numerous accolades, including the Grammy Award for Best Male Vocal Performance for Hello Dolly in 1965, as well as posthumous win for the Grammy Lifetime Achievement Award in 1972. His influence crossed musical genres with inductions into the Downbeat Jazz Hall of Fame, the Rock and Roll Hall of Fame, and the National Rhythm and Blues Hall of Fame, among others. I'm playing a snippet from What a Wonderful World by Louis Armstrong.
And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
आज पुण्यतिथि है परशुराम मिश्रा की। उनका जन्म 25 जनवरी 1894 को बारपली, उड़ीसा में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद थे। वे संबलपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। भारत सरकार ने परशुराम मिश्रा को पद्मश्री से सन 1961 में सम्मानित किया था। और आज जयंती है किशोर कुमार की। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय संगीत के इतिहास में अमर गायक, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गीतकार थे। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार बचपन से ही एक संगीतकार बनना चाहते थे। किशोर कुमार को पहली बार गाने का मौका 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में मिला। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। हिंदी सिनेमा में इलेक्ट्रिक संगीत लाने का श्रेय किशोर कुमार को जाता है। किशोर कुमार को पार्श्व गायन के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
एंड आउटस्टैंडिंग सिंगर एज वेल एज अ कॉमिक एक्टर इन द ईयर 2013 कुमार वाज वोटेड द मोस्ट पॉपुलर मेल प्लेबैक सिंगर इन अ पोल कंडक्टेड बाय द फिल्म फेयर मैगजीन. लेट्स लिसन टू अ मेडले संग बाय किशोर कुमार फर्स्ट.
নাম আমার কিশোর কুমার গাঙ্গুলি, রবি ঠাকুর যে ভাষাতে বলতো কথা তাই বলি, রবি ঠাকুর যে ভাষাতে বলতো কথা তাই বলি. নাম আমার কিশোর কুমার গাঙ্গুলি,
সবনে মাফ কিয়া মুঝকো পর মৈ হুঁ জিসকা দোষী, কব টুটেগি उसके घायल होठों की खामोशी. वो भी माफ करे तो जानू, मन को साफ करे तो जानू, इंसाफ करे तो जानू.
बीच राह में दिल बल बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगर. हम लौटेंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना.
Besides Hindi, Kishore also sang in other Indian languages including Bengali, Marathi, Assamese, Gujarati, Kannada, Bhojpuri, Malayalam, Odia and also Urdu. And the line, actually the string of songs that he sung is endless, and we can't really sum up his kind of singing in a short, segment that we have. Moving on, today is also the birth anniversary of Shashikala Sehgal, popularly known as Shashikala only, the television and Indian film actress who played supporting roles in hundreds of Bollywood films beginning in the 1940s. A snippet of a song performed by her on screen.
जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले. वो किसी गाला निकिड़ा गयोला, वो किसी गाला निकिड़ा गयोला.
आज जन्म दिवस है विशाल भारद्वाज का. उनका जन्म 4 अगस्त 1965 को चांदपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है. वे भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, पटकथा लेखक और निर्देशक हैं. उन्हें गॉड मदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. विशाल के शब्दों में गुलजार उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं. विशाल निर्देशित पहली फिल्म मकड़ी थी. इसके बाद उन्होंने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पर आधारित फिल्म मकबूल बनाई. मकबूल को बर्लिन फिल्म समारोह सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जगह मिली. वर्ष 2006 में उन्होंने शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक ओथेलो पर आधारित फिल्म ओंकारा निर्देशित की. इस प्रकार 2014 में शेक्सपियर के उपन्यास हैमलेट पर आधारित उनकी फिल्म हैदर आई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. फिल्म को 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले.
6 महीने में अब्बा जी की गद्दी मियां की है, किंग ऑफ किंग.
पंडित, तेरे शोबड़ खाने में मुझे विश्वास होता ना तो आज मैं तेरी जबान काट डालता.
काट दो, मैं काट दो.
पानी पानी आ रही है तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे.
आज जन्म दिवस है अरबाज सलीम अब्दुल रशीद खान का. उनका जन्म 4 अगस्त 1967 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ है. वे एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्यतः हिंदी सिनेमा के अलावा तेलुगु, उर्दू, मलयालम सिनेमा में भी काम करते हैं. 1996 में अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने कई प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया.
जरूरत है, सख्त जरूरत है. आपको क्या लगता है, जब हम उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं तो क्या वो मुजरिम फूलों का हार लेके हमारा स्वागत करते हैं? नहीं, वो खतरनाक हथियारों से और गोलियों की बौछार से हमारा स्वागत करते हैं. तब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना हमारा मानवाधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. क्या सारे ह्यूमन राइट्स क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के ही होते हैं? क्या सिपाही का कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या हम सिपाही इंसान नहीं?
और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार
नमस्कार।